दर्शकों को नमस्कार। ये एक विशेष कार्यक्रम है सत्य हिंदी के लिए। सैम पिट्रोडा साहब का नाम से कोई अपरिचित नहीं है। 81 वर्ष के सैम पिट्रोडा साहब भारत में संचार क्रांति के जनक हैं, मतलब राजीव गांधी जी के मित्र रहे हैं। दूर संचार के क्षेत्र में उनका जो 55 सालों का अनुभव है, और देश में आज जो भी दिख रहा है संचार क्रांति के क्षेत्र में, वो सैम पिट्रोडा साहब की देन माना जा सकता है। मनमोहन सिंह जी के सलाहकार भी थे, संयुक्त राष्ट्र में सलाहकार रहे, टेलीकॉम के क्षेत्र में इन्वेंटर के तौर पे उनको जाना जाता है। और जो राजीव जी के समय में अलग अलग मिशन स्थापित हुए थे, टेक्नोलॉजी मिशन और संचार मिशन, वाटर मिशन, वो सब सैम पिट्रोडा साहब की देश को देन है। और ये एक हमारे लिए सुखद आश्चर्य है कि राजीव जी के साथ जो उन्होंने काम किया, आज वो उनके बेटे राहुल के साथ भी काम कर रहे हैं, मतलब उनके काम को भी मॉनिटर कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। तो ये बातचीत पिट्रोडा साहब से हम अमेरिका से कर रहे हैं, वो शिकागो में है इस समय, पद्मभूषण पिट्रोडा साहब। देश में जो चल रहा है उसके बारे में पिट्रोडा साहब बहुत ही बारीकी से नजर रखे हुए हैं। और हम लोग जितने यहाँ के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर चिंतित हैं या नहीं है, उतनी ही चिंता ये अमेरिका में बैठ के कर रहे हैं। पिट्रोडा साहब, बातचीत शुरू करते हैं आपके साथ। मैं हिंदुस्तान में काफी कुछ चल रहा है इस समय, मैं आपसे थोड़ा सा ये समझना चाहता हूं कि जो चल रहा है उसको दुनिया, खासकर अमेरिका जैसे प्रजातांत्रिक देशों में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, एक बड़ी संख्या में इंडियंस भी हैं वहां, करीबन 50 लाख से ज्यादा इंडियंस भी हैं। इंडियन डायस्पोरा की बड़ी स्ट्रेंथ है। और मोदी जी जब ह्यूस्टन में आए थे, ट्रंप के समर्थन में रैली की थी, तो हमने देखा कि कितने लोग थे वहां। तो मैं ये थोड़ा सा इंडियन ऑडियंस के लिए समझना चाहता हूं कि भारत में जो इस समय चल रहा है उसको, क्योंकि अमेरिका में भी आप देख रहे हैं कि वहां आपके यहाँ भी चुनाव होने जा रहे हैं और ट्रंप वहां लड़ रहे हैं, वो भी एक तरह के मोदी के रूप में ही हैं वहां, जिस तरह का वो क्रिश्चियनिटी को उन्होंने इशू बनाया हुआ है, वाइट सुप्रीमेसी को इशू बनाया हुआ है, एंटी मुस्लिम उनका इंस्टांस है, वो तमाम चीजें यहाँ भी हैं, कॉमन है, बहुत सारी चीजें कॉमन है, लॉट ऑफ थिंग्स कॉमन बिटवीन मोदी और बीजेपी एंड रिपब्लिकन पार्टी। तो मैं भारतीय दर्शकों के लिए आपसे ये समझना चाहता हूं कि विदेशों में, अमेरिका में खासकर, यूरोप में, भारत में जो चल रहा है उसको लेकर क्या विचार चल रहा है, क्या सोच रहे हैं लोग, हाउ डू दे व्यू द होल थिंग हियर हैपनिंग हियर।
थैंक यू गर्ग साहब। सबसे पहले आपका मैं आभारी हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया। जैसे आपने बताया पहले कि हम मिले थे 1986 में, बहुत साल गुजर गए उसके बीच। आप भी बड़े अच्छे लगते हैं आपकी उम्र में, सो इट इज गुड टू सी यू एंड इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। थैंक यू। इंदौर एक बहुत बड़ा सेंटर है और हमें कभी इंदौर से बोलने का मौका नहीं मिलता है। हम जब भी कुछ कहते हैं तो हमारे साथ जो बात करते हैं वो दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई से होते हैं। सो मैं आपके दोस्तों और सुनने वालों को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप टाइम लेके हमें सुन रहे हैं। आपने जो प्रश्न किया वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी इस साल 2024 में 64 कंट्रीज में चुनाव होने जा रहा है, सब जगह चुनाव में डेमोक्रेसी की हालत ठीक नहीं है। हमारे वहां भी देखिए कि पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स, डिवाइसिव पॉलिटिक्स, वेयर कम्युनिटीज आर डिवाइडेड बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, क्रिश्चियंस बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, स्टेट, वैसे ही अमेरिका में भी देर इज अ डिविजन गोइंग ऑन बेस्ड ऑन ब्लैक लाइव्स मैटर, इमिग्रेशन। हर जगह डेमोक्रेसी इज अंडर स्ट्रेन। हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूशंस हैव बीन कैप्चर्ड। ईडी लीजिए, इनकम टैक्स ऑफिस, सिक्योरिटी, पुलिस, इलेक्शन कमीशन, यूनिवर्सिटीज एंड टू सम एक्सटेंट जुडिशरी। पीपल आर बिगिनिंग टू लूज फेथ इन दीज इंस्टीट्यूशंस कि ये इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सरकार के हिसारों पे चलती है। अब डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोनॉमी, सिविल सोसाइटी लीजिए, कि सिविल सोसाइटी को आप अच्छी तरह चलने नहीं देंगे तो आपको कौन मॉनिटर करेगा? आप सिविल सोसाइटी को बोलेंगे कि देखिए आपने इनकम टैक्स में कुछ गड़बड़ की है तो हम आपको बंद कर देंगे, आप फॉरेन एक्सचेंज वायोलेशन करते हैं तो हम आपका अकाउंट फ्रोज कर देंगे। ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहता है जिससे सरकार इंस्टीट्यूशन को दबा रही है। दूसरा, मीडिया इज बेसिकली मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल्ड। मीडिया टेक्स साइड एंड इज नो लॉन्गर ए न्यूट्रल मीडिया दैट गिव्स यू फेयर प्ले एंड ओपन प्लेटफॉर्म। जो भी आपको इंटरव्यू करता है उसका भी खुद का ओपिनियन है। तीसरा, कि लोगों ने विश्वास गुमा दिया है सरकार पे। सब जगह लोग समझते हैं कि सरकार चलाने वाले सब करप्ट हैं, बड़े बड़े पैसों वालों से मिले जुले हैं और सब खाली पावर और पॉलिटिक्स में पड़े हैं और प्रॉफिट में। उनको लोगों की समस्याएं ध्यान में नहीं आती। वो बड़ा बड़ा धंधा लगाते हैं, जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन गरीबी भी बढ़ रही है। सब जगह देर इज इनकम इनइक्वालिटी। अमेरिका में भी वही है, अभी इंडिया में भी वही है। We celebrate billionaires, but we don't pay attention to the poor.
मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि ये भारत में इस समय जो चुनाव हो रहा है, मतलब जिन चीजों की तरफ आपने इशारा किया वो पिछले 10 सालों से चल रही है।
Yes.
पहली बार कुछ ऐसा लग रहा है कि उम्मीद की रोशनी नजर आ रही है। I mean, there is some light at the end of the tunnel.
I hope so.
आप कैसे, how do you see the outcome of the election? I mean,
हमारे पास हमारे पास क्रिस्टल बॉल नहीं है कि अब जिससे देख सकते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि टेम्पो बदल रहा है। लोग समझ रहे हैं कि ये सरकार ने जो प्रॉमिसें की थी एम्प्लॉयमेंट के बारे में, किसानों की इनकम डबल करने के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, ये सब प्रॉमिसें पूरी नहीं की गई है। आप खाली एम्प्लॉयमेंट लीजिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी दृष्टि से देश में, क्योंकि हमारा देश जवान है। अब हम जब बात कर रहे थे 86 की, जब हम मिले थे, 70% ऑफ द कंट्री इज बॉर्न आफ्टर दैट। तो उन्हें क्या पता कौन है सैम पिट्रोडा, उन्हें क्या पता कि राजीव गांधी ने क्या किया। तो जो भी झूठ बोलते हैं ये लोग, जवान लोग बेचारे समझते हैं वही सच है। बहुत लोगों ने तो खाली एक ही सरकार देखी है, बीजेपी की सरकार। तो लोगों को ऐसा दिमाग में बैठा दिया है झूठ झूठ करके कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अब हमें पता है सबको 70 साल में क्या हुआ, IIT, IIM, डैम्स, पावर, गरीबी कितनी हटी, कितना सारा काम किया 70 ईयर्स में, स्पेस सेंटर, मिल्क रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी मिशंस, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, एटॉमिक एनर्जी, हर जगह देश ने प्रगति की है। अमेरिका में जो 50 लाख लोग हैं वो अच्छी तरह से रहते हैं क्योंकि इंडिया में उनको एजुकेशन फ्री मिला। इंडिया में IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज में बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन आपको मिला और आप इसी की वजह से यहाँ आके क्या कमा सकते हैं, वो इंडिया का एक कंट्रीब्यूशन है।
आप ये बताइए कि क्या मोदी जी के राज में कुछ भी नहीं हुआ क्या? 10 सालों में क्या हुआ?
ऐसे मैं नहीं कह सकता क्योंकि इतना बड़ा देश है, उसमें कुछ तो होना ही है। मोदी का राज हो और किसी का भी राज हो, 1.5 बिलियन पीपल डू समथिंग। यू कांट इग्नोर कि ये लोग सब खाली घर पे बैठे हैं, वो जो सरकार कहती है वही करते हैं। लोग घर बनाते हैं, लोग बिल्डिंग बनाते हैं, लोग पढ़ने जाते हैं, लोग साइंस इनोवेशन करते हैं, लोग कंपनियां लगाते हैं। बहुत सारा हुआ है, लेकिन वो कैसी कंडीशन में हुआ है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे ट्रीट किया गया है, आपकी डेमोक्रेसी में आपको रियली फ्रीडम है कहने की, और आप कुछ कहेंगे तो आपको जेल में डाल देंगे। इंदिरा गांधी के टाइम में जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, इट वॉज अ बैड पीरियड फॉर इंडिया, बट इट लास्टेड ओनली कपल ऑफ ईयर्स। ये तो एक नया ढांचा बनाया जा रहा है जिससे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा, और ये जो है इट इज बेस्ड ऑन टू मच इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स। लोगों को अब 10 साल के बाद कुछ समझ में आ रहा है कि फटीग है सेट इन, जॉब्स हैव नॉट बीन क्रिएटेड, ये लोग झूठ बोलते हैं। अभी हमने सुना 2 दिन पहले कि पीएम ने कोई राजस्थान में एक सभा में कहा, इतना बुरा कहा का हमारी दृष्टि से, इट वॉज सो चीप दैट आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई प्राइम मिनिस्टर।
क्यों कहा होगा? आप ये बताइए कि व्हाट इज द ट्रिगर?
आई थिंक ट्रिगर मे बी फियर कि हमारे वोटर्स वोट देने नहीं आ रहे हैं, फियर दैट हम हार रहे हैं, इनसिक्योरिटी, और सब झूठ ना, उसमें कुछ भी सत्य हो तो ठीक है। ऐसा कुछ मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है, और लोगों को उस्कराना कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे और मुसलमान को दे देंगे, ये तो सबका इंसल्ट है। अब ऐसी बात जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री टॉक्स एंड गेट्स अवे विथ इट, इट्स नॉट फेयर। एनीबडी एल्स सेइंग इट वुड बी अटैक टुडे बाय इलेक्शन कमीशन एंड सुप्रीम कोर्ट एंड प्रॉबली वुड बी इन जेल जस्ट बिकॉज ही इज प्राइम मिनिस्टर, नोबडी इज पेइंग अटेंशन। सो आई थिंक पीपल आर बिगिनिंग टू फाइनली रियलाइज दैट इंडिया थ्राइव्स ऑन डाइवर्सिटी।
मुझे एक चीज बताइए पिट्रोदा साहब, कि आपको क्या लगता है कि मोदी जी आसानी से पावर छोड़ देंगे? व्हाट ही वुड डू फॉर अल्टीमेटली?
जो भी इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, फेयर और फ्री इलेक्शन के रिजल्ट्स, एवरीवन इन इंडिया विल हैव टू एक्सेप्ट दैट, मोदी और नो मोदी।
आप तो टेक्नोलॉजी के इतने इनोवेटर रहे हैं, there are a lot of apprehensions, fear about the use or manipulation of voting machines.
Yes.
आपका क्या मानना है?
मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहले इंडिपेंडेंट था, ऑटोनोमस था. जब से आपने वीवीपैट लगाया तब से इट इज पॉसिबल टू मैनिपुलेट. क्योंकि कोई एक इंजीनियर जाता है, एक डोंगल लेके उसको लगाता है पीछे विथ ए लिस्ट ऑफ ऑल दी सिंबल्स, उस टाइम कुछ भी हो सकता है. और आप हमें बताते हैं हमारी रिसीट 7 सेकंड के लिए एक ग्लास के पीछे, और फिर आप डाल देते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक डब्बे में. इससे हमें विश्वास नहीं है कि आप जो हम वोट कास्ट करते हैं वो वोट आप काउंट करते हैं. बेस्ट वुड बी हमें रिसीट दे दीजिए, हम देखेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि हमारी रिसीट चाहिए, और फिर एक ऐसे डब्बे में डालेंगे जो इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड ना हो.
सुप्रीम कोर्ट इसका कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रहा है? मतलब इतनी पिटिशंस हैं एंड हियरिंग चल रही है, तो व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज नॉट गिविंग एनी दिस थिंग टू हियर टू द ऑल दीस कंप्लेंट्स.
आई टोल्ड यू अबाउट द ऑटोनॉमी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस. ओके, आई रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट, I will respect their judgment, but I have lost trust in the system. As a voter, I am not talking as any party, please. As a voter, I am not sure that the vote I am casting is the vote you are counting. Now you prove it to me. It is your job, government, EC, Supreme Court, to prove to me that don't worry, your vote that you are casting is the vote you are counting. I am not sure about that.
एक चीज बताइए पिट्रोडा साहब कि सुप्रीम कोर्ट नॉट इंटरफेरिंग, इलेक्शंस आर हेल्ड विद द सेम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड मोदी साहब ही कम्स बैक टू पावर विद मेजोरिटी, व्हाट एवर द मेजोरिटी, व्हाट द अपोजिशन शुड डू? अपोजिशन को क्या एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए?
वो तो लोगों को सोचना है. इट इज नॉट जस्ट ऑपोजिशन, आई थिंक इट इज पीपल ऑफ इंडिया विल हैव टू डिसाइड. पीपल ऑफ इंडिया विल हैव टू डिसाइड वेदर दिस वाज अ फेयर इलेक्शन और नॉट. एवरीवन इरिस्पेक्टिव ऑफ हु दैट पर्सन इज एंड हु ही वोटेड फॉर और शी वोटेड फॉर. आई नो ऑफ केसेस, इट वॉज शोन इन केरला रिसेंटली दैट मशीन्स वर और कैन बी मैनिपुलेटेड. I have seen time and time again how it can be manipulated. What more proof you need? It is such a complex system. It is not just that dabba. It is how you handle that dabba. Where does it go? Who comes to install it? What is the qualification of that person? Which company produced it? Where was it, you know, delivered? Who delivered it? Ye puri system has many points of leaks. देखिए ऐसा ही क्वेश्चन जर्मनी में खड़ा हुआ था एक वक्त. तो जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि there is no way with electronic equipment as of today you can conduct free and fair election. So Supreme Court told German government that elections must be held on paper ballot.
एक चीज पूछना है पिट्रोडा साहब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पर्टिकुलरली इन यूरोप इवन इन अमेरिका जो राइटेस्ट एलिमेंट्स हैं दे आर गेटिंग पब्लिक सपोर्ट.
यस
इन इवन इफ आई मीन पीपल डोंट लाइक इट, यू लुक फॉर एग्जांपल इन जर्मनी और स्पेन और even in America, the kind of support Trump is getting, even in India, iska karan kya hai ki ye, how do you view this thing that the rightists are gaining importance?
I'm not an expert on it. बट आई वुड से एज अ लेमन दैट राइटिस्ट आर अलाइन विद द रिच. रिच हैव मनी टू सपोर्ट इलेक्शंस. अब हमारे वहां देखिए इलेक्शन बॉन्ड का इश्यू था. इलेक्शन बॉन्ड में कौन पैसा डालता है? ओनली रिच. व्हाई शुड कंपनीज बी अलाउड टू फंड इलेक्शंस? आई डोंट अंडरस्टैंड. कंपनीज डू नॉट वोट, पीपल वोट. सो वर्ल्ड ओवर वी शुड हैव अ सिस्टम वेयर ओनली पीपल कैन फंड इलेक्शंस, नॉट कंपनीज. एंड देयर शुड बी अ लिमिट टू व्हाट एन इंडिविजुअल कैन फंड. अभी तो क्या है, हैंडफुल ऑफ पीपल फंड इलेक्शंस. दे आर अलाइंड विद द राइटिस्ट एलिमेंट बिकॉज देन दे विल.
फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेड सीतारमन कि इफ दे कम बैक टू पावर दे विल अगेन लॉन्च इलेक्टोरल बॉन्ड्स.
वेल इट विल बी सैड डे, इट विल बी अ सैड डे. आई वुड रेकमेंड एवरीबडी, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन अमेरिका एज वेल, that elections should be funded only by individuals. Corporate should not be allowed to fund elections because they do not vote. How could you allow somebody to fund elections if they don't vote? Okay? And if you are super rich, there should be a limit to what you can fund. So you don't tend to control. Because all these people who put election money in the system want their money out with a multiplier. So they manipulate policies. It is sort of a corruption in an organized way everywhere. Not just in India, in US it is same thing. You know, people who put in hundreds of millions of dollars in election want billions of dollars back in some form or the other.
एक चीज ये बताइए कि ये जो अपोजिशन की यूनिटी है जो इतना राहुल गांधी ने इतने कोशिशों के बाद इसको सीमेंट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम मे बी आफ्टर 1977 एक बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है देश में. आप इसका हाउ डू यू व्यू इसकी हाउ डू यू व्यू इट्स सक्सेस, मतलब हाउ वुड यू रेट इट सक्सेस, आई मीन इन व्हाट टर्म्स आप कहेंगे कि ये सक्सेसफुल हो गया एक्सपेरिमेंट?
हम ऐसा मानते हैं डेमोक्रेसी में अलायंसेस आर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ओवर बिकॉज दैट अलाउज मोर चेक्स एंड बैलेंसेस. इफ देर इज वन वेरी स्ट्रांग पार्टी इट इज नॉट गुड फॉर ए नेशन. यू नीड स्ट्रांग ऑपोजिशन. सो ये अलायंस that has been formed is good for India. If alliance wins, there'll be checks and balances. People may see that as some inconvenient because it won't be dictatorial, but that's what democracy is all about. We don't want dictatorial decision making. We want decision making where everybody participates. There is debate, there is discussion, there is disagreement, there are negotiations. Those are good things. Those are not bad things. But today, if there is one issue with the alliance, national media will jump and say, oh, they are fighting. Of course, they are supposed to fight. That is what democracy is all about. What you're telling me then, that you want dictatorial regime. Dictatorial regime is not good for any democracy.
You know what? One thing, Pitroda sahab, tell me one thing. Ki if Rahul Gandhi is making error or mistake at any point, which you have noticed, I mean, which you see, aapko aisa lagta hai ki wo Rahul Gandhi ki weakness hai, ya India Alliance ki weakness hai, which is not being addressed or which is not being addressed. आपको क्या लगता है, क्या मतलब आप इतनी दूर बैठ के क्या देखते हैं कि वो कहां गलती कर रहे हैं?
वी ऑल मेक मिस्टेक्स. मिस्टेक्स आर अ वे ऑफ लाइफ. द क्वेश्चन इज हाउ डू यू टॉलरेट मिस्टेक्स. अभी तो क्या है, मीडिया इज पेड टू एम्प्लीफाई योर मिस्टेक. आपने थोड़ा स्क्रैच किया, तो बोले क्यों करे स्क्रैच किया, राहुल गांधी पे 3 बिलियन आंखें लगी पड़ी है, वो कुछ भी करे तो लोग किस लोगों को ऐसा लग कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये बराबर नहीं है, और उनको बदनाम करने में करोड़ों से करोड़ों रुपये लगाए हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने। हम सब जानते हैं केस कर दिया उनके पास, 24 केस लगाए उनके पर। अब नेशनल हेराल्ड का केस 10 साल से चल रहा है, कुछ नहीं मिला तो भी परेशानी चालू ही है। आपने ये टैक्स नहीं भरा, आपने वो टैक्स नहीं भरा, आपका अकाउंट फ्रोज कर दिया, आपने ये फॉर्म नहीं भरा है, वो फॉर्म नहीं भरा है। ओके, सो हाउ डू यू ऑपरेट इन दिस काइंड ऑफ ए।
आप ये चीज बताइए कि जो इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका का, वो मोदी को सपोर्ट करता है ये ऐसा मानकर चला जाता है, हाउ डू यू व्यू दैट थिंग?
यहां पे डायस्पोरा नॉट जस्ट यूएस बट ऑल ओवर कंसिस्ट ऑफ 3 or 4 डिफरेंट टाइप्स और ग्रुप्स ऑफ पीपल। एक ग्रुप है टेंपल वाले, जो प्रदेश जाके ऐसा समझते हैं कि हमारा काम है हिंदू धर्म को फैलाना। हम जब शिकागो में आए 1964 में, 60 साल पहले कोई टेंपल वेम्पल नहीं था यहां पे, कुछ नहीं था, एक खाली वेदांत सोसाइटी का छोटा सा मकान था। 60 साल में शिकागो में 15 टेंपल बन गए हैं। सब लोग ऐसा करते हैं कि हमारी कम्युनिटी में एक टेंपल चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे नहीं तो बिगड़ जाएंगे, उनको धर्म सिखाना है। ऑल ऑफ अ सडन दे बिकम मोर हिंदू देन दे वर। सो ये ग्रुप इज ऑल फॉर बीजेपी बिकॉज दे बिलीव देयर जॉब इज बीइंग डन बाय बीजेपी ऑफ प्रिजर्विंग हिंदुत्व, प्रोटेक्टिंग अवर रिलीजन, प्रमोटिंग दिस। सो दे डोनेट इन टेम्पल एंड दे ऑल्सो डोनेट बैक होम। सो जब मोदी यहां आते हैं आप देखते हैं ह्यूस्टन में हजारों लोग, ये सब टेम्पल वाले हैं, बस भर भर के टेम्पल उन लोगों को वहां ले जाती है, टेम्पल वाले उन्हें खाना देते हैं। दूसरा ग्रुप है प्रोफेशनल्स का, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, एकेडमिशियंस, पीपल लाइक टॉप एग्जीक्यूटिव्स, पीपल हु रन IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यू नो एंड मेनी अदर कंपनीज, दे आर नॉट पार्टी टू इट बट दे गेट अट्रैक्टेड टू मोदी बिकॉज मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, सो दे वॉन्ट देयर बिजनेस टू बी सेफ, दे हैव नो अदर इंटरेस्ट, they have no ideology, their ideology is profit. But there are many professionals who criticize, write, say their things and they are not welcome. There's a lady recently who was sent back from the airport because she had written an article against BJP or Prime Minister. She was not allowed to enter the country. Okay? Natasha called. And she said, look, my mother is sick. I am originally from India. I have British passport now. Why are you not allowing me to enter? And the reason given was that we have orders from Delhi. I mean, how can you do that? Then you have people in Middle East. It's a different group. There are rich and they are all the workers. Okay. So you have different groups of people. So I don't think you can generalize that all NRIs support Modi. But I would say most of the NRIs who believe in temple and are building temples support BJP and Modi.
On an average, around 3 lakh people are living or giving up their citizenship in nationality in India and settling down abroad. They are surrendering their passports. भारत को हर साल छोड़ रहे हैं करीबन 3-4 लाख लोग। क्यों
सब
छोड़
पैसे
रहे
वाले,
हैं?
सब पैसे वाले लोग प्रदेश में सेटल हो गए हैं सब, वेदर इट इज वेदांता और मित्तल्स, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, देर आर मेनी मेनी, यू नो, यू लुक एट पीपल इन दुबई, वेरी लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस विथ मनी फील सेफर आउटसाइड देन इन देयर ओन कंट्री।
पर ये राहुल गांधी, ये राजीव गांधी के टाइम पर या इंदिरा गांधी के टाइम पर या नरसिंह राव के टाइम पर तो नहीं था इस तरह का, इवन अटल बिहारी जी के टाइम पर नहीं था।
क्योंकि देयर
अभी क्यों हो
पीपल,
रहा है ये?
बिकॉज पीपल फील दैट द डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट, पीपल फील दैट द रूल ऑफ लॉ विल नॉट बी फॉलोड, पीपल फील दैट इफ यू आर अटैक टूडे आई विल बी अटैक टूमोरो, इफ यू आर हेरेस टूडे मे बी आई विल बी अटैक्ड एंड हेरेस लेटर ऑन, सो दे वॉन्ट टू बी सेफ।
एक चीज ये बताइए पिट्रोडा साहब, कि द टेस्ला चीफ एलन मस्क, ऑल ऑफ ए सडन, आई मीन अचानक से उन्होंने अपना शेड्यूल्ड ट्रिप जो था इंडिया का वो कैंसिल कर दिया। एंड देर आर लॉट ऑफ टॉक अबाउट दैट कैंसलेशन, एब्रप्ट कैंसलेशन, और वो उसको इस चीज से जोड़ रहे हैं कि एलन मस्क सीज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन इंडिया, तो वो अभी ही डिक्लाइन टू विजिट इंडिया एट ए टाइम व्हेन थिंग्स आर नॉट स्टेबल एंड देर कैन बी ए चेंज इन गवर्नमेंट। आपको कैसा लगता है? हाउ डू यू सी दैट?
See, we give too much importance to rich and famous. World really centers around them, whether it is Elon Musk, Bill Gates, or World Economic Forum. We don't pay much attention to planet and people. I saw the debate or the conversation Prime Minister had with Bill Gates. And I thought it was pathetic, personally. Okay. So people were excited about Elon Musk coming. And Elon Musk decided not to come for whatever reason. I don't know. I would put too much emphasis on it. But I understand people are curious. It's possible that he feels that this is not the time to take side because it's not 100% sure. So he must have been advised that just wait for election results. If election results don't turn out the way Modi and BJP is expecting, you'll be in trouble. So what is the hurry? You can go there after 6 weeks. Possible. Okay. But if he was going to come, big deal now. Okay, so he'll discuss about his business. He wants to expand his business. Okay. But we make such a big issue out of one rich guy coming in India and setting up a business because we think of top-down approach. What we need is bottom-up approach. We need to decentralize our economy. We need to focus on small is beautiful. We need small and medium scale industries to thrive. We need to work with our farmers to improve productivity. We need to build local infrastructure, local production. I would be more interested in that than having one factory from Elon Musk.
आपका क्या मानना है कि इवन जो बाइडन डिक्लाइन इनविटेशन टू कम इन जनवरी, व्हेन उनको जब बुलाया गया जनवरी में, इवन ही डिक्लाइंड?
Because there is a lot of concern in this country also about the state of democracy in India. Some people don't speak up because they are afraid either they will lose their business, they will not be allowed to enter the country, और ऑल काइंड ऑफ सोशल मीडिया अटैक्स वुड बी ऑन देम विच हैपन्स रेगुलरली एंड पीपल डोंट वॉन्ट टू टेक चांस.
आपको नहीं लगता कि ये इट इज सॉर्ट ऑफ इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ ए सॉवरेन नेशन, दैट अमेरिका को ये लगता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी नहीं है या है? अमेरिका का कंसर्न क्यों होना चाहिए?
क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी इज ग्लोबल पब्लिक गुड. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 1.5 बिलियन पीपल. इफ इंडिया वाज अ कंट्री ऑफ 10 मिलियन नोबडी वुड केयर. इंडिया गेट्स रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन वर्ल्ड ओवर नॉट बिकॉज वी आर रिच बट बिकॉज वी हैव ह्यूज ह्यूमन रिसोर्स. अवर ह्यूमन रिसोर्स बेनिफिट्स नॉट ओनली इंडिया बट अमेरिका. देखिए अमेरिका में 50,000 डॉक्टर्स आर ऑफ इंडियन ओरिजिन. अमेरिकन हेल्थ सिस्टम विल कोलैप्स इफ
मैं
इंडियन
आपसे
डॉक्टर्स डोंट
इससे
वर्क.
इससे मिलता जुलता एक सवाल पूछता हूं कि
जी
मोदी जी अगर फिर से आ जाएंगे तो, और जो बाइडन वहां फिर से पावर में आ जाते हैं, तो क्या वुड जो बाइडन स्टॉप डूइंग बिजनेस विद मोदी, और व्हाट ही वुड डू?
इट डिपेंड्स. यू नो आई थिंक इफ जो बाइडन कम स्ट्रांग हियर एंड देर इज लॉट ऑफ रेजिस्टेंस टू वॉट इज गोइंग ऑन विथ इंडियन डेमोक्रेसी देन ही विल बिकम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल लीडर्स बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स इंडिया टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री. पीपल डू नॉट वॉन्ट इंडिया टू बी एन ऑथोरिटेरियन. देन वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइना रशिया एंड इंडिया.
मोदी जी का मानना है कि इंडिया एज ए मार्केट इज द नीड ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड दे परचेज लॉट ऑफ वेपन्स फ्रॉम वेस्ट, सो दे कैन नॉट इग्नोर इंडिया.
True. The point is, do you look at India only as a business partner, or do you look at India as a global partner for peace and prosperity? देखिए, 200 million Muslims in India are not radicalized at all. They are decent citizens. Many are educated. They are peaceful comparatively. It is not like Pakistan. It is not like what happened in other parts of the world, Afghanistan and all. So it is very important for us to recognize that Indian democracy is good for global peace.
What do you fear? What are your fears that if अगर मोदी जी फिर से पावर में आ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या संदेह है, क्या क्या डर है कि व्हाट कैन हैपन टू दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडिया इटसेल्फ?
First of all, peace would be at risk. Look what happened on the eastern part of the country. So I would say peace would be my priority number one, that people can live together in peace and harmony, irrespective of their religion, their language, their culture. I don't want to see conflict between Hindu and Muslim, Christians and Jains and Sikhs and others, nor do I want to see conflict between North and South, East and West. So that's one basic challenge we all have. Second, with the kind of policies this government has pursued, we have not been able to create employment. We have not been able to improve agriculture productivity. And this is a great concern to me, that the growth will be lopsided. There'll be further inequality. Large number of people at the bottom of the economic pyramid will not get the opportunity to participate. So the real bhagidari that Rahul talks about, where OBC, Dalits, minorities, tribals get fair share of their jobs and opportunities, will be in danger. Okay. So the concerns are at a political level, but economic level, but and also at the level of changing constitution.
But you have not, I'm coming to that, that you have not listed that even in a dictatorship, peace can be restored, employment can be created.
Not so happened.
How do you?
It hasn't happened. It could happen in China, but it won't happen in India. Because Indian ethos is very different. Indian diversity is very different. China has one language. All Chinese look alike. In India, the diversity is phenomenal. And we must celebrate that, respect that.
आपको लगता है कि कभी मोदी जी फिर से आ गए भारत में तो भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे?
Well, possible. I don't know. But the way they all talk about it, I mean, look at the importance given to Ram Temple. Fine, we are all happy that Ram Temple got built. But to politicize that, where Prime Minister is the only one who comes like an actor at this puja. There are no priests of any importance. It is not Prime Minister's job to do all that. It was a choreographed event. Yeah. It was not an event for a Prime Minister. It was an event for the people, priests and puja. It should have been a normal puja by priests, head of the, you know, Hindu religion, acharya, or whatever we have, as many as we have, should have been given the stage, and it is their event. How could PM hijack that event? And people accepted it. And all the rich and famous were there.
मैं एक चीज पूछ रहा हूँ पिट्रोडा साहब कि अगर मोदी जी फिर से आ जाते हैं पावर में या बीजेपी आ जाती है आपको क्या लगता है अपोजिशन विल स्टिक टुगेदर और इट विल डिसइंटीग्रेट
नो आई थिंक दे विल स्टिक टुगेदर आई डोंट थिंक दे विल डिसइंटीग्रेट बिकॉज़ दे आर ऑल इन दिस टुगेदर फॉर लॉन्ग हॉल एंड इट इज द आइडिया ऑफ इंडिया दैट ब्रिंग्स देम टुगेदर आइडिया ऑफ इंडिया विच इज रूटेड इन diversity, democracy, inclusion, freedom, justice, liberty, fraternity. It is that idea that brings all these people together.
आपको क्या उम्मीद लगती है मतलब अभी जो चल रहा है उसमें what is your best hope you see in the elections?
Best hope would be from my perspective where people of India realize what is good for India in the long run. Mm-hmm. People of India, before voting, decide that this election is not about Modi versus who, BJP versus alliance. This election is about the future of a nation. This election is one of the most important elections in the recent history of India. This election is about the idea of India. What kind of a nation you want to build where your children and their children could live in peace and harmony, where jobs will be created, economy will expand, and everybody would be given respect and dignity. Nobody would be left behind. Everyone will have same set of opportunities. This election is about real sustainability and real inclusion.
Tell me the last question I'm asking. जो PM ने अभी कल कहा राजस्थान में कि ये कांग्रेस जो है सबका पैसा बटोर के जो इन्फिल्ट्रेटर्स है उनको जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांट देगी महिलाओं का सोना मंगलसूत्र लेके बेच देगी या उनको दे देगी, जो हाउ डू यू थिंक यू, आपने कहा कि देर आर 20 crore 200 मिलियन माइनॉरिटी पीपल आर हियर, आपको क्या लगता है कि उनको जो इंस्टिगेट कर रहे हैं, हाउ शुड दे रिटेलिएट, आई मीन पीसफुली ऑफ कोर्स नॉन वायलेंटली, और शुड कीप क्वाइट एंड वेट फॉर, आई मीन हाउ डू शुड दे रिस्पॉन्ड टू द होल थिंग?
नॉट ओनली दे बट एवरी इंडियन शुड रिस्पॉन्ड टू दैट स्टेटमेंट वाइल वोटिंग. Every Indian should think, is this the kind of Prime Minister I want, who is a pathological liar, who instigates instability and violence, who says things that should not be said on public platform, but it comes from his heart. It comes from, you look at the way he talks, okay, he believes in it. Okay. Do you want a pathological liar as a prime minister, or you want a decent human being?
But prime this minister, is his. This, but this is his core strength. How do you define that?
I don't call that a strength, unfortunately. You know, I worry about that kind of a person. I believe in a character of a leader. I believe in the values leader bring to the table. My leader is Gandhi. My leader is Mandela. My leader is Martin Luther King. My leader is definitely Nehru. Okay? It's a different kind of leadership which carries everybody with you, which is humble.
मैंने आपसे पूछा था एक सवाल कि राहुल गांधी ने क्या गलती किया या नहीं किया, कर रहे हैं. ये जो नया कम्युनल बोगी खड़ा किया है प्राइम मिनिस्टर ने चुनाव जीतने के लिए, उसको राहुल गांधी को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए पॉलिटिकली?
राहुल गांधी इन हिज यात्रास हैव वेरी क्लियरली आर्टिकुलेटेड ऑल द की इश्यूज ही स्टैंड्स फॉर. ही हैज बीन लिसनिंग टू पीपल केयरफुली. ही हैज बीन गेटिंग आइडियाज फ्रॉम एवरीवन. इन द कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो very clearly outlines everything. I am very proud of that manifesto. I want to compliment all those who worked on the manifesto, because it begins with high moral ground. It says we will restore democracy, we will rebuild our institutions and make them more autonomous, we will respect civil society, we'll make sure that the media is free and fair. Having said all this at the high moral ground, then it gets into operations, saying we will make sure that OBC, Dalit, minorities, tribals and others will be real bhagidars.
एक चीज बताइए पिट्रोदा साहब, जो आखिरी सवाल है हमारा, कि फर्स्ट फेज के इलेक्शन में बीजेपी स्टेट्स में बड़ा लो परसेंटेज का वोटिंग हुआ, एंड सेकंड फेज में अभी होने वाला है, अगर लो परसेंटेज का पोलिंग होता है बीजेपी स्टेट्स में, बीजेपी का जहां सुप्रीमेसी है वहां, राजस्थान, मध्य प्रदेश पर्टिकुलरली, और तमाम जगह पर, हाउ, आपको क्या लगता है, मतलब एज एन एक्सपर्ट, हाउ डू यू सी दिस फेनोमेना?
आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, थैंक यू फॉर एलिवेटिंग मी, बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. But I would say that Prime Minister is probably afraid because the voting was low. And maybe that's why he came up with this strange allegations, false allegations in the manifesto and all. I think he is in panic. If there is low voting, it will be reflected in the victory of the alliance. I was talking to somebody from DMK, and somebody you know high enough and with a lot of knowledge, and I respect this person. He said, look, we are going to win all 40 seats. All 40 seats are going to be DMK.
Yeah, that is there. Okay.
Okay.
एक चीज बताइए
कि शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ द अलायंस.
आप बताइए कि ये जो पीएम ने किया राजस्थान में, इसको और ज्यादा ही विल शार्पन दिस कम्युनलिज्म और ही विल रिट्रीट.
माय एडवाइस टू पीएम वुड बी वॉच योर लैंग्वेज, बी डिसेंट. यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री, वी ऑल रिस्पेक्ट यू, वी ऑल वॉन्ट यू टू बी dignified, because you are talking as the prime minister of a nation of 1.5 billion. Control your words. Don't attack people of India. Don't arouse them. Don't light fires, because we'll all pay if you light fires.
पेट्रोला साहब, एक चीज बताइए कि आप भी गुजराती हैं और प्राइम मिनिस्टर भी गुजराती है, एज अ गुजराती आपको कैसा लगता है व्हेन यू सी अ गुजराती प्राइम मिनिस्टर, आई मीन डूइंग थिंग्स व्हिच यू डोंट लाइक?
वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, नरेंद्र भाई इज अ फ्रेंड एट अ पर्सनल लेवल. आई नो हिम, माय वाइफ नोज हिम, वी हैव मेट हिम, एंड इज वेरी चार्मिंग एट अ पर्सनल लेवल, वेरी नाइस. आई हैव नथिंग अगेंस्ट person Narendra Bhai Modi. I can have a dinner with him, I can have a pleasant conversation with him, and he is a likable person, I must say that.
What is the best thing you like? What is the best thing you like about him?
He's a decent sort of, you know, friend to have, but I don't like his policies. I don't like his thinking. Okay. I mean, he's healthy. Okay, he works hard according to everybody. Okay, he's charming, he speaks well. Okay, and when we met him, my wife and I, we had some great conversation with him, we had tea with him, we took some great pictures. He immediately sent pictures back to me, and I had several interactions with him at a personal level, no issue at all.
आपने कभी उनको सजेस्ट किया कुछ कि आपको कैसे, हाउ शुड ही रूल द कंट्री?
नहीं, आई डू नॉट डिस्कस पॉलिटिक्स विथ हिम एट ऑल. ओनली थिंग आई डिड इज व्हेन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, ही एंड आई हैड अ ब्रीफ चैट, एंड आई टोल्ड हिम टू कंटिन्यू इनोवेशन काउंसिल. दैट लुक, वी आर एट द कस्प ऑफ इनोवेशंस, प्लीज कंटिन्यू, बट दे डिडंट कंटिन्यू, सो दैट्स ओके. That's separate issue.
Yeah. Okay, Petrodas Saab, thank you very much for being...
Thank you, Garg Saab. Good to see you again, and let's be in touch. I hope it was okay.
It should be. I mean, it is for logon ke upar hai, darshakon par hai, shrotaon par hai, ki how they...
Lekin aap jante hain aapke log, aap jante hain aapke shrota. So, you know, your input is equally important.
So, I tried to be different, you know, aap se thoda alag kisam se baat karna, not being very formal and...
Thank you.
Yeah, so
I enjoyed it.
I enjoyed it, and let us hope for our next interaction sometime. Thank you very much for being so kind to find time this early morning in Chicago. I mean, it's very early morning.
Yeah, it's okay. It's, you know, 10 o'clock. So
yes.
Okay. Dhanyawad.
Thank you. Namaskar. Thank you.